कृष्ण, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज प्रातःकालीन उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर प्रातःकालीन श्रीमद् चैतन्य चेतामृत कक्षा में। और जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं उससे कई ज़्यादा भक्त इंटरनेट पर इस वक्त मौजूद हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं प्यार संख्या 82, छठवा अध्याय। अध्याय का शीर्षक है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। मध्य लीला में हम इस वक्त हैं। और अभी हम लोग आगे चर्चा कर रहे थे, हम जब ये अध्याय शुरू हुआ था तो उस वक्त हमने देखा किस प्रकार से महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी आए, और अभी एक वाद विवाद चल रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके जामाता, उनके जमाई गोपीनाथ आचार्य के साथ। देखते हैं आगे क्या होता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर 82 श्लोक संख्या 82 जो अमृत प्यार संख्या 82 बोर्ड पर है। 81 प्यार पढ़ेंगे, उस पर हम 82 प्यार पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा जो है इसका आइडिया पड़ेगा कि कहाँ से शुरुआत हुई है। शुरुआत वैसे काफ़ी पहले से हुई है, आप पीछे नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम अनुवाद पढ़ते हैं। अच्छा, पहले हम 82 प्यार का पठन करते हैं, उसके बाद हम 81-82 दोनों के प्यारों का अनुवाद। अनुमान प्रमाण न है ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वर के हो न ही जाने। अनुमान प्रमाण नय ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वर के हो नहीं जाने। अनुमान प्रमाण नय ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वर के हो नहीं जाने। शब्दार्थ बढ़ते हैं, हमारे पीछे द्वारा ही शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुमान प्रमाण, अनुमान से प्रमाण ना है नहीं, ईश्वर तत्व ज्ञाने परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए, कृपा बिना, कृपा के बिना ईश्वर रे परम भगवान को के हो कोई भी ना ही नहीं जाने जानता है। अनुवाद सुने। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, अनुमान द्वारा नहीं। इससे पिछले अनुवाद को हम बढ़ते, उसके बाद हम तात्पर्य बढ़ेंगे ज़्यादा। भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा, हम तार्किक अनुमान द्वारा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आगे अब हम यही कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, अनुमान द्वारा नहीं। बिल्कुल क्लोज्ड है। तो ये क्योंकि तर्क चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो इस वजह से तो तात्पर्य में देखिए परमात्मा कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी भौतिक तर्क द्वारा नहीं समझे जा सकते। मूर्ख लोग जादू का खेल देखकर मुग्ध हो जाते हैं, और योग शक्ति से संपन्न कुछ एक अद्भुत कार्य देखकर ही वे जादूगर को भगवान या अवतार मान बैठते, किंतु यह साक्षात्कार की विधि नहीं है। नहीं मनुष्य को ईश्वर के अवतार या भगवान के विषय में अनुमान लगाना चाहिए। मनुष्य को प्रामाणिक व्यक्ति से या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीखना होता है, जैसा कि कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने किया। स्वयं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपनी शक्तियों के विषय में संकेत भी करते हैं। केवल शास्त्र तथा महाजनों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना चाहिए। भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए भगवत कृपा प्राप्त होनी आवश्यक। तो यही जो है विषय, इसका मुख्य विषय है कि एक तरफ है भगवत कृपा और दूसरे तरफ है अनुमान प्रमाण। तो शास्त्रों में वैसे तो तीन से ज़्यादा, पर मुख्यतः तीन प्रकार के प्रमाणों की बात करी जाती है। तो पहला है जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं यानी परसेप्शन, दूसरा प्रमाण अनुमान, ये भी प्रमाण है, अनुमान नहीं है, अनुमान को भी प्रमाण के रूप में स्वीकृति मिली है। अनुमान प्रमाण, अनुमान रीजन, अनुमान को स्पेकुलेशन भी कहते हैं पर अनुमान को लॉजिक या रीजन भी कह सकते हैं। और तीसरा है शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टमेंट। तो ये तीन चीजें, हालांकि जब अनुमान की बात होती है तो स्पेकुलेशन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पर जब वो स्पेकुलेशन डायरेक्टेड हो तो उसको रीजन का नाम दे दिया जाता है, यानी रीजनेबल है, रैशनल है। पर जो भी है, अगर वो डायरेक्ट शास्त्र यानी भगवान के वाणी से नहीं आ रहा तो फिर भी रीजन है। तो वह अनुमान प्रमाण जो है तो अपने आप में एक प्रमाण माना, यूजुअली अनुमान को वैसे जैसे कि वो प्रमाण नहीं है, अनुमान भी प्रमाण होते हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार, परंतु संपूर्ण प्रमाण नहीं माना जाता, कंक्लूसिव जो है उसको नहीं माना, निर्णायक नहीं माना जाता उसको, पर प्रमाण माना जाता उसको। अक्सर जो है इस बारे में कई प्रकार के जो है भ्रांत धारणाएं हैं कि अनुमान प्रमाण एक है सिर्फ अनुमान लगाना और एक अनुमान प्रमाण। तो यहाँ पर क्योंकि इसलिए ये शब्द इस्तेमाल करें क्योंकि ये पहला श्लोक ही है, अनुमान प्रमाण, अनुमान नए नहीं है, अनुमान प्रमाण ना किसमें नहीं है, ईश्वर तत्व ज्ञान। तो भगवान के तत्व को समझने के लिए अनुमान प्रमाण जो है वो काफी नहीं है। तो भगवान के अलावा विषय को समझने में कई बार अनुमान प्रमाण काफी हो सकता है। जैसे कहीं से धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब अनुमान क्या है, कहीं आग लगी होगी, जहां आग है वहां धुआं है, तो अनुमान प्रमाण ठीक है। परंतु अनुमान प्रमाण में छेद कहां रह जाता है कि जहां आग लगी होगी तो वहां धुआं है, तो अगर आग में पानी डाल देंगे तो आग बुझेगी तो भी धुआं निकलेगा। अब आग नहीं है पर धुआं है, तो इसीलिए अनुमान प्रमाण में इस प्रकार से कई बार कुछ छेद रह जाते हैं। तो इसलिए इस प्रमाण का इस्तेमाल भगवान को समझने के लिए जो निर्णायक नहीं माना जाता, मददगार साबित हो सकता है पर फाइनल नहीं माना जा सकता। कई बार हम अनुमान का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में शुरुआती दिनों में जब हम आते हैं तो हमारे मंदिर में हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं 7 डे सेशन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और उसमें प्रमाण जो शुरू में शुरू होते हैं वो अनुमान प्रमाण से शुरू होते हैं। चीज़ें देखिए, इस फूल को देखिए, फूल की खूबसूरती को देखिए, अगर फूल को खूबसूरत बनाने के, अगर एक कागज़ का फूल देखिए, इसको बनाने के लिए कोई आदमी होगा तो क्या इस फूल के लिए बनाने का आदमी नहीं होगा, तो क्या ये प्रमाण है? नहीं, ये अनुमान प्रमाण है, अनुमान। अगर इसके लिए कोई क्रिएटर होगा, इसका कोई बनाने वाला होगा तो इसका युग बनाने वाला होगा तो अभी यहाँ पर होगा की बात होती है उसमें। पर वो अनुमान प्रमाण जो है वो किसके लिए मददगार साबित होता है, अनुमान प्रमाण किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन वो टारगेट ऑडियंस है, कौन वो शख्स है जिस पर अनुमान प्रमाण इस्तेमाल करना चाहिए, वो शख्स, वो लोग जिनको शास्त्रों पर विश्वास नहीं है उनके लिए अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण कारगर साबित होता है। हर चीज का एक स्थान है, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है, उसको भगवान की वाणी से प्रमाण देंगे तो प्रमाण उसके लिए अनुमान प्रमाण है, वो उसके लिए अनुमान है, आपके हिसाब से है जी, मेरे हिसाब से नहीं। तो ऐसे इंसान को जो है लॉजिक और रीजन आमतौर पर जो है उस इंसान के लिए ज्यादा कारगर साबित होता है जिसको शास्त्र प्रमाण पे विश्वास नहीं है, पसंद नहीं है उसे। व्हाई? बिकॉज लॉजिक और रीजन जो है, रैशनलिज्म, ये सारी चीज आम है, मुझे मालूम नहीं हिंदी में रैशनलिज्म को क्या कहेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविकवाद, वास्तविकता, वास्तविकवाद, रैशनल यानी, तो ये इसका भी जो, इसकी जो नींव है, इसकी जो नींव है वो क्या है और वो किसको किसको हिट करता है, वो हमारे माइंड और हमारे इंटेलिजेंस को, मन और हमारे बुद्धि, इसको सेटिस्फाई करता है, इसको शांत करता है। पर आत्मा का स्तर उससे ऊपर है। इंद्रियाणि प्राणियाः और इंद्रियस्तु परम न मनोस्तु परो बुद्धि बुद्धिस्तु पर सब, तो ऊपर, तो इसीलिए वहां तक नहीं जाती है बात। तो ये रीजन लॉजिक जिसके लिए हम सारी दुनिया जो इसकी कायल है, सब इसके दीवाने हैं, पर ये दरअसल ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक स्तर तक को जो है छुपा था, बुद्धि दिमागी सतह पर जो बात होती। तो उसके लिए रैशनल, उसके लिए जो है लॉजिक रीजन चलता है। पर आध्यात्मिक स्तर जो है बियॉन्ड रीजन, इसका मतलब है कि उसका एक अपना रीजन है, और वो क्या, उसका एक जो सबसे डायरेक्ट एग्जांपल है वो इसी श्लोक के अंदर, इसकी शुरुआत होती है अनुमान से, इसकी शुरुआत होती है और इसका खात्मा होता है कृपा से। इस कृपा में जो है वो लॉजिक, वो रीजन, वो रैशनलिज्म, वो प्रैग्मेटिज्म नहीं चलता। इट हैज गॉट ए हायर लॉजिक। कृपा आत्मा के स्तर पर होता है, कृपा बुद्धि के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर नहीं हो सकता। शारीरिक मानसिक तौर पे ज्यादा से ज्यादा कृपा यानी मेहर, और कृपा ज्यादा से अगर इस स्तर पर अगर कुछ होता है तो उसे एहसान कहते हैं। आत्मिक तौर पे कोई किसी पे एहसान नहीं कर सकता, क्योंकि एहसान का मतलब है इसके बदले जो है एहसान मंद होगा, और उसके बदले जो है वो कुछ कई बार अपेक्षा भी होती है, चल तेरे पे एहसान किया क्या याद करेगा। और अक्सर जो लोग एहसान लेते हैं वो भूल जाते हैं, एहसान करने वाला नहीं भूलता। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सही फरमा रहा हूँ। कृपा के केस में कृपा करने वाला भूल जाता है, कृपा मिलने वाले को याद रहता है। हाँ समझ, ये कृपा, एहसान, एहसान का मतलब आप इसको, और कृतज्ञता, एहसान कृतज्ञता और कृपा अलग अलग, मेहर एहसान अलग अलग, दो चीज अलग। कृतज्ञता के लिए अकृतज्ञ शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कृपा के लिए अकृपया नाम से कोई शब्द नहीं है। एहसान मंदी के लिए एहसान फरामोश है, मेहर के लिए ना मेहरी नहीं है। श्री राधाधिकम भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौनिताई की जय, श्री नहीं मिलता, मैं डिक्शनरी में नहीं है ना, विलोम शब्द नहीं है, कृपा का विलोम शब्द नहीं है, मेरी गलती नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, कृतज्ञता का विलोम शब्द मिलेगा, क्योंकि ये दो चीजें अलग है। ये शारीरिक और मानसिक स्तर पे हो सकता है कृतज्ञता और एहसान, और ये आत्मिक स्तर पर ही संभव है कृपा। सो इसीलिए ये जो हम बात कर रहे थे, रीजन लॉजिक प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकलिटी, ये सारी चीजें बौद्धिक स्तर तक जो है इसकी दौड़ है, और इसकी दौड़, इसकी इसकी शुरुआत जो कृपा की जो शुरुआत है, ये बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म पे बात होती है। यहाँ पर जैसे क्योंकि अनुवाद नहीं, और इसका पिछले श्लोक में, इसलिए मैंने दोनों को कनेक्ट किया। पूर्ण पुरुषों ने भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, अनुमान द्वारा नहीं। इसलिए अनुमान द्वारा नहीं, इसलिए क्योंकि अनुमान की दौड़ जो है बौद्धिक स्तर तक है। पर जो आदमी बौद्धिक स्तर पे भी नहीं है यानी बेवकूफ है, उसके लिए जो है अनुमान प्रमाण बहुत कारगर साबित होते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए बुद्धिमत्ता आवश्यक है। तजंत ही सुमेय दशा, तो जो अल्पमेय दशा है, अल्पमेय दशा को सुमेय दशा तक की तरक्की का जो सफर है वो लॉजिक और अनुमान प्रमाण से ही जो है तय होना ज्यादा आसान होता है उसके लिए, तय करना उसके लिए कि ये ऐसा है ऐसा। और मायावादी भी जो है इस अनुमान प्रमाण का सहारा लेते हैं यहां तक लाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद पिछले श्लोक में बिल्कुल शुरुआत में ही बात कर रहे हैं और आगे ये वाला जो तात्पर्य है उसको आगे लेके जा रहे हैं। पिछले श्लोक की शुरुआत में प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए मैं पढ़ता हूँ, यदि हम किसी वस्तु के इतिहास को खोजें तो उसका एक सृष्टा मिलेगा, अतएव इस जगराट जगत का कुछ सृष्टा होना चाहिए। ऐसे तर्क से जो है मायावादी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस विराट जगत की सृष्टि के लिए भगवान की शक्ति होगी। ऐसे क्योंकि हर क्रिएटर का, क्रिएशन का कोई क्रिएटर है, तो सब पूरे जगत का भी जो है कोई क्रिएटर होगा, तो ऐसा क्रिएटर होगा यानी कि अनुमान से चल रहे हैं। हालांकि यहां पर भी अनुमान से वो जगह नतीजा सही निकला है, नतीजा सही निकला है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अनुमान से हमेशा नतीजा गलत निकलता है, यहां पर भी सही नतीजे पर पहुंचे। पर क्या है, शास्त्र प्रमाण पे ना पहुंचने के कारण, शास्त्र प्रमाण तक ना पहुंचने के कारण जो है इसमें छेद रह सकता है क्योंकि होगा, इसीलिए वो साकारवाद तक नहीं पहुंच पाते। यहां तक पहुंच जाते हैं कि कोई सृष्टा होगा, कोई बनाने वाला होगा, पर वो ऐसा है, वो कैसा होगा, अब इस पे जो बनाने वाला होगा वो कैसा होगा। हालांकि अगर लॉजिकली थोड़ा और चले रीजन को इसको लेके, तो अगर इस दुनिया में जो भी बनाने वाले हैं उनका आकार होता है तो इस पूरे दुनिया को बनाने वाले का भी आकार होगा, होना तो ऐसे ही, पर यहां पर जाके जो उनकी गाड़ी घूम जाती है। इसीलिए अनुमान प्रमाण न है ईश्वर तत्व ज्ञान, ये ईश्वर तत्व ज्ञान में जो है जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा सच साबित हो। और यहां जहां पे तत्व ज्ञान की बात आती है, तत्व का मतलब है प्रिंसिपल, तत्व का मतलब होता है प्रिंसिपल, एक कहते हैं एक सिद्धांत, सिद्धांत। सो वहां पर जो है फेरबदल नहीं हो सकता, सिद्धांत के एप्लीकेशन में हो सकता है। तो यहां पर क्या बात हो रही कि कैसे नहीं समझे जा सकते, तर्क द्वारा प्रभुपाद बता रहे, भौतिक तर्क के द्वारा नहीं समझे जा सकते। हालांकि अगर आप देखें यहां प्रभुपाद बता रहे हैं और ये खुद बता रहे हैं गोपीनाथ आचार्य कि तर्क द्वारा नहीं समझे जा सकते, पर वो कर क्या रहे हैं इस वक्त, कर तो वो तर्क ही रहे। ये सार्वभौम भट्टाचार्य से और भट्टाचार्य के जो शिष्यों से उनसे क्या करें, कोई गाना थोड़ी गा रहे हैं, कोई कविता थोड़ी गा रहे हैं, तर्क ही कर रहे हैं। और तर्क के द्वारा जो है क्या कह रहे हैं कि तर्क द्वारा नहीं समझा सकते, यहां पे प्रभुपाद खुलासा कर रहे हैं भौतिक तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकते। कहने का मतलब है कि तर्क को हम भगवान को समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तर्क का जो सिद्धांत है वो अपने आप में जरूरी नहीं है कि पूरा हो। इसीलिए तर्क, ये जो शास्त्रीय तर्क होता है इसको कहते हैं वाद, और इन वादों से जो है कई बार वाद में विवाद भी होता है, तो वो इसलिए वो वाद जो है कई बार स्थापित होने के बावजूद उसके अंदर कोई और गुंजाइश रहती है। इसीलिए हम सुनते हैं जैसे माया सिद्धांत नहीं, मायावाद है ना, शून्य सिद्धांत नहीं, शून्यवाद। वाद का मतलब है कि तर्क के द्वारा जो है यहां तक पहुंचा गया, समझ रहे बात को, वाद लगा हुआ है इसके अंदर, खुद ही मानते हैं कि ये वाद है। फिर निराकार सिद्धांत नहीं, निराकार वाद, वाद यानी कि तर्क से यहां तक पहुंचा गया। तो अब आप कहेंगे साहब ये तो ठीक है, पर और भी बात है, द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद है, द्वैत अद्वैतवाद है, तो ये वाद ही क्या है? जी हाँ बिल्कुल सही, ये भी तर्क के द्वारा ही सिद्ध किया गया है। ये जितने भी वाद है, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, इनके जो आचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निंबार्काचार्य, इन्होंने अपने वादों का स्थान, ये ऐसा नहीं कि कविताएं लिख के नहीं करी हैं, जाके अपने सिद्धांत को जो है स्थापित करना पड़ा है, बौद्धवादियों के अगेंस्ट उनसे मुकाबला करके, निर्विशेषवादियों से मुकाबला करके, शैवों से मुकाबला करके, निरीश्वरवादियों से मुकाबला करके, कैसे मुकाबला करके, मुकाबला करके स्थापित किया गया। पर इसीलिए तो हमारा कौन सा वाद, हमारा कोई वाद नहीं है, क्योंकि हमारा किसी से भी वाद नहीं, क्योंकि हमारा जो है वाद से ऊपर तत्व, अचिंत भेदाभेद तत्व, हम सिद्धांत की बात करते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने जो है पांचवा वाद एस्टेब्लिश नहीं किया, तत्व एस्टेब्लिश, और तत्व एस्टेब्लिश करने के लिए बहस करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा तत्व तक पहुंचाने के लिए किसी को समझाने की जरूरत पड़ सकती है। प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्लेन्ड बट प्रिंसिपल नीड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, बिकॉज प्रिंसिपल इज ऑलरेडी प्री एस्टेब्लिश्ड। प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, प्रिंसिपल अगर है और शाश्वत प्रिंसिपल है, शाश्वत सिद्धांत है, तो वो सदा मौजूद है, उसको जाके जो है अभी एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए महाप्रभु ने जो है, इसलिए ये तर्क में ज्यादा पड़े नहीं, कभी काट सकते थे, महाप्रभु जो है खुद न्यायिक थे, अपने पूर्व जीवन में बहुत बड़े तार्किक थे, हम भगवान से बड़ा तार्किक कौन हो सकते, पर फिर भी उन्होंने इसका सहारा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं लिया, कहीं जहां जरूरत पड़ी वहां लिया, पर बहुत कम, He kept it to the minimum. उनका जो आंदोलन है, हमारा जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, ये सर्ग संकीर्तन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तर्कवादियों के आंदोलन के नाम से नहीं जाना जाता। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे पास तर्क है नहीं, पर हमें ये बात मालूम है कि तर्क अपने आप में पर्याप्त नहीं होंगे हृदय परिवर्तन करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मे नॉट बी सफिशियंट, बिकॉज अल्टीमेटली लॉजिक डजंट कन्विंस द हार्ट। इट इज लव विच ट्रांसफॉर्म्स द हार्ट, प्यार से होते हैं। तो इसीलिए खास तौर पर कलयुग में जहां पर लोगों का जो है झूठा अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, तो वहां तर्क से किसी को नहीं हरा सकते, मानेगा नहीं, क्योंकि हार मानने के लिए भी बहुत विनम्रता चाहिए कि हाँ मैं हार गया, मैं गलत हूं और आप सही हैं, इसके लिए बहुत विनम्रता, जिस कलयुग में ये विनम्रता नहीं मिलेगी आपको। इस वजह से जो है ये जो जरिया है, ये एक लिमिट के बाद जाके काम नहीं करता। इसलिए और शास्त्रों में भी तर्क को खासतौर पर भगवान को समझने के लिए जो है अपूर्ण बताया गया है, अचिंत खलु विभाव योजित तर्क अप्रतिष्ठा शुद्ध विभिन्न्यात, तर्क अप्रतिष्ठानाथ, चाहे वेदांत सूत्र ले लें, चाहे उपनिषद ले लें, चाहे महाभारत ले लें, तो सब में जो है ये बोला कि प्रतिष्ठा नहीं कर सकते आप, अप्रतिष्ठानाथ तर्क वेदांत सूत्र, यानी आप सत्य की प्रतिष्ठा तर्क से नहीं कर सकते, मददगार साबित हो सकती है जहां से, पर इससे ज्यादा नहीं, कृपा इससे होता है। ना आत्म प्रवचन न लभ्य न मेधया न भुवना श्रुते न यमेव एष आत्म विनोते तेन लभ्यस्ते न तनु स्वाम मुंडक मनुष्य में ऐसे बताया गया, भगवान बता रहे ना आत्म प्रवचन न लभ्य, कि मेरे को प्रवचनों के द्वारा नहीं लाभ किया जा सकता, ना मेधया बहुत ज्यादा बुद्धि के द्वारा नहीं लाभ किया जा सकता, ना भुवना श्रुते न बहुत ज्ञान से भी लाभ नहीं किया जा सकता, तो कैसे लाभ किया, यमेव आत्म विनोते यमेव एष आत्म विनोते, जिस व्यक्ति पर मैं खुद कृपा करता हूँ तेन लभ्यस्ते तनम स्वाम, वो मुझे स्वयं मुझे लाभ करता है, मुझे प्राप्त करता है। तब ये कृपा क्या है, तो लटका दिया बीच, क्या क्या समझे इस अब ये कृपा क्या है, ये अनएक्सप्लेन्ड या इनएक्सप्लिकेबल है, क्या है, समझाया नहीं जा सकता कि हमें समझ नहीं आता, क्या क्या है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। दरअसल कृपा समझने के लिए, कृपा समझने के लिए, कृपा की सराहना करने के लिए जो है खुद का जो हृदय है वो ग्रैटिट्यूड से, वो एहसानमंदी से, वो शुक्रगुजारी से जो है भरा हुआ होना चाहिए, तब कृपा समझ आती है। कृपा समझने की जो क्वालिफिकेशन है, कृपा समझने की जो योग्यता है वो ये। तो अगर हमारा हृदय जो है कृतज्ञता से भरा हुआ है तो कृपा समझेंगे, जबकि कृपा और कृतज्ञता हमने देखा अलग अलग चीजें। पर ये कृतज्ञता जो है, ये एहसानमंदी जो है, ये लाभदायक साबित होती है कृपा को समझने के लिए। क्योंकि अगर ये भौतिक कंसेप्ट समझ आ रहा है जिस जगत में हम रहते हैं तो ये कंसेप्ट हमें मददगार, अगर ऐसा ही कंसेप्ट है तो ओके फाइन, तो इससे एक हायर कंसेप्ट होगा। तो हाँ, तो वो रिसेप्टिव जब हमारा हृदय होता है तो उस वक्त कृपा समझ भी आती है और कृपा होती भी, दोनों चीज़ें। क्योंकि ये कृपा जो चीज़ है, जब हम किसी पे कृपा करें या कोई हम पे कृपा करें, भगवान हम पे कृपा करें, तो इसके अंदर कंपल्शन नहीं होता। कोई बाहर से कंपेल करके आपको कृपा नहीं करवा सकता, किसी कनपट्टी में बंदूक रखे जो आप उस पर कृपा नहीं करवा सकते। तो ये क्योंकि अंदर से, क्योंकि कोई कृपा करने के लिए कोई कानून भी नहीं है कि आपको कृपा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसीलिए ये कृपा कानून से ऊपर, क्योंकि ये कृपा कानून के दायरे में नहीं आता। ये कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, ये लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि कृपा जो है ऊपर की वस्तु इसलिए है क्योंकि इसकी ये कानून के पहुंच से भी ऊपर है। जहां कानून खत्म होता है वहां कृपा आती है। इस मर्सी इज अबाउट जस्टिस। कैसे, अभी जैसे था, अभी लेटेस्ट जैसे चल रहा था, ये जब ये मुंबई हत्याकांड का जो चल रहा था उस टाइम पे, तो क्लीमेंसी प्ली है ना, तो उसके लिए कसब के लिए जो है क्लीमेंसी प्ली थी। अब कानूनन तो जब फांसी है, क्लीमेंसी प्ली नहीं, इससे ऊपर भी एक चीज़ है, प्रेसिडेंशियल पार्डन है ना, पार्डन, चलो माफ़ किया। तो इस पर कानून लागू नहीं होता, कानून ने जो देना था, जो सजा देनी थी, जो मुकर्रर करना था वो कर दिया, पर इससे ऊपर। तो इसीलिए यही वजह है कि भगवान से जो है, इसलिए ये कंसेप्ट जब ठीक से समझ नहीं आता तो भगवान के चरित्र पे जो है बहुत लांछन लग जाता है कि भगवान जो है वो कृपालु हैं कि इंसाफ पसंद है, क्या है इंसाफ के तराजू में किस चीज को तोला जाए। तो ऐसा अब इसका बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, तो जी ये जो बाहरी आदमी है, ये लोग बेईमान है, जालसाज है, चोर है, लुटेरे हैं, है ना, इनका कोई किरदार नहीं है, और इनके साथ तो बड़ा अच्छा अच्छा हो रहा है, तो कहाँ है इंसाफ। तो अगर ये लोग बुरे हैं तो इनके साथ बुरा होना चाहिए, और बुरा करेगा कौन, इस बात का फैसला कौन करेगा, और ये जस्टिस कौन देगा, भगवान। ठीक है, कानून को तो ये लोग बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को बेवकूफ बना सकते हैं क्या? भगवान तो भगवान है ना, तो फिर भगवान को कैसे बेवकूफ बना सकते, भगवान को तो नहीं बेवकूफ बना सकते, तो फिर भगवान जो इंसाफ क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, भगवान है अभी कि नहीं है, या है तो क्या इतने शक्तिहीन है, इतने नामर्द है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। पूरी भगवत्ता की जो कंसेप्ट को जो है हिला के रख देती है ये जस्टिस का कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि ये जस्टिस का जो कंसेप्ट है, ये इंसाफ का जो कंसेप्ट है जो इस दुनिया में है, ये पर्सनल वेंडेटा पे, ये बदले पे आधारित है। इसके साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। ये सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए हो सकते हैं कारगर साबित हो कुछ हद तक, पर समाज को उस स्तर से ऊपर उठाने के लिए नहीं है। ધ મેથડ ઓફ જસ્ટિસ જોઈએ પ્રિવેન્ટિવ નેચર મેં યે ગુનાહ હોને સે રોક સકતા હૈ આદમી કો નેકી કે રાસ્તે પે નહીં ચલા સકતા નેકી કે રાસ્તે પે ચલાને કે લિયે કૃપા કી આવશ્યકતા કે હા ઇસસે ઉપર ભી કુછ હૈ જિસકી તરફ મેં જાના ચાહતા હું અગર કૃપા અગર 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 જસ્ટિસ કી ઇન્સાફ કી બાત કરે તો ભગવાન કા ઇન્સાફ હમારે લિયે હમ સબ કે લિયે યહાં પે ક્યા હૈ ચલિયે કમ સે કમ મેરે લિયે કે વો કર્મ દેખે જાય ઓર ઉસ કર્મ કે હિસાબ સે જો હૈ કરોડો જન્મ નર્ક મેં ઝોંક દિયા જાય અગર ઇન્સાફ કી બાત કરતે હૈ ભગવાન ઇન્સાફ પસંદ હૈ કે નહીં તો ઇન્સાફ કે હિસાબ સે ચાહિયે તો એસે કર્મ હૈ હમારે और ज्यादा ज्यादा दूर ज्यादा ज्योतिषी के पास अजूबी के पास जाके देखने की जरूरत नहीं हाथ दिखाने की जरूरत नहीं कि क्या कर्म रहे हैं जो हमारे शरीर है यही कर्म का काफी नहीं है कि भगवान के खिलाफ बगावत करी हमने बागी की क्या सजा होती है बागी के साथ क्या इंसाफ होना चाहिए तो वही सजा हमारे लिए तो क्या इस इंसाफ के तलबगार बने हम इस इंसाफ के पीछे जाए इसकी गुहार लगाएं इसलिए भगवान के पास जो भक्त आते हैं कोई भी वैष्णव भजन किसी वैष्णव भजन में जो है इंसाफ नहीं मांगा गया भगवान कहाँ है तुम्हारा इंसाफ कृपा मांगी गई क्योंकि इससे ऊपर है क्योंकि ये कृपा जो है ये एक हायर एलिमेंट है करुणा होना और ये कृपा जो है ये धर्म का एक स्तंभ है चार वैसे एकदम कृपा है ना दया कृपा शुद्धता शौच इसलिए धर्म का एक स्तंभ क्योंकि ये इससे ऊपर है इंसाफ को धर्म का एक स्तंभ नहीं बनाया इंसाफ को धर्म का स्तंभ जो है हम इंसानों ने बनाया इसीलिए तराजू लेके खड़े रहने वाला सिस्टम हर चीज तो तोली नहीं जा सकती कम से कम कृपा का तो नहीं तोली जा सकती इसलिए कृपा जो इससे ऊपर और कृपा मिलने के लिए भी जैसे बताया एक जो जिसके अंदर जो ये एहसानमंदी है जिसके अंदर ये कृतज्ञता है और जो खुद कृपा करने के लिए तैयार है उसे भगवान की कृपा मिलती है इसीलिए प्रचार प्रभुपाद की जो किताब है प्रचारी सार उसका एक मतलब ये है प्रचार का मतलब कृपा का वितरण जो कृपा देने के लिए तैयार है उसे भगवान कृपा देने के लिए तैयार है जो कृपा देने के लिए तैयार नहीं है उसको कृपा की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसने बांटना नहीं तो उसने क्या करना है जो कृपा देने के लिए तैयार है उसे भगवान कृपा देने के लिए तैयार है कृपा की जमाखोरी करने के लिए जो भगवान लोगों को कृपा नहीं देते कई बार लोग आते हैं भगवान हम पे कृपा कीजिए तो लोगों की जमाखोरी बढ़ाने का जो है जिम्मा जो है भगवान ने नहीं लिया बहुत सारी कृपा मैं बटोर लूं हमारा जो गौड़ीय मठ सिद्धांत है कृपा बटोरने का नहीं है कृपा बांटने का खुद ब खुद कृपा बटोरी जाएगी क्योंकि कृपा बांटने के लिए कृपा करने के लिए आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कृपा करने की क्योंकि जिसके पास है जैसे मान लीजिए किसी ने तो भगवान या जैसे प्रेसिडेंशियल पार्डन तो उनके पास शक्ति है तभी अगर कोई आम आदमी बोले कि नहीं जी आपको माफ किया तो माफ नहीं किया जाएगा कानून के हिसाब से अबव हायर देन द लॉ अबव द लॉ तो भगवान यानी कि कानून बनाने वाला भगवान कानून से ऊपर है यानी कि वो ऐसा काम भी कर सकता है जो कानून के अंदर नहीं आता फिर भी गैर कानूनी नहीं कहलाएगा तो ये कृपा यानी कि कृपा का मतलब है कि एक ऐसा मौका देना एक ऐसा अवसर देना कि हाँ बावजूद इसके कि आपके साथ आपका यह हर्ष होना चाहिए था पर फिर भी ठीक है आपको एक मौका दोबारा दिया जाता तो यही मौका जो कि भगवान हमें देते बावजूद इसके कि आपको नर्क जाना चाहिए बावजूद इसके कि आपको आप इंसानी शरीर के लायक नहीं हो आपको एक मौका दिया जाता है किसका, किस चीज का मौका? भगवान की भक्ति करने का ये मौका। तो हालांकि भगवान का आमन मैं ठीक बात, इस बात में भगवान की जो कृपा है वो असीमित है, तो क्या भगवान की कृपा असीमित है? कृपा अपने आप में ही असीमित का वो है संकेत, सीमित चीज को कृपा नहीं कहते, कृपा के अंदर कैलकुलेशन नहीं हो सकता। दैट विच इज कैलकुलेटेड बिकम्स लिमिटेड एंड दैट विच इज लिमिटेड इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मर्सी, लिमिटेड मर्सी, लिमिटेड मर्सी एग्जिस्ट नहीं करती, मर्सी मस्ट बी अनलिमिटेड। हालांकि हम भगवान से जब आके प्रार्थना करते हैं तो ऐसे बोलते कि भगवान थोड़ी कृपा करो, कृपा थोड़ी होती नहीं, कृपा होती है असीमित। हमारी इनसफिशियंट अंडरस्टैंडिंग के वजह से हम कई बार ऐसे बोलते भगवान थोड़ी, मेरे पे भी थोड़ी कृपा, मेरे पे भी थोड़ी, पर कृपा थोड़ी होती, कृपा अपने अनलिमिटेड होती है, कृपा जो है वो ऐसे तैसे। और इसीलिए हमारे हमारे वैदिक शास्त्रों में जो है ये दो कंसेप्ट्स आते हैं, दया और कृपा। दया, दया का मतलब है जो चीज मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी, जिस चीज का मैं हकदार नहीं था, जिस चीज का मैं लायक नहीं था, वो चीज मुझे मिली, इसे कहते हैं दया। और कृपा उल्टे तरफ से समझा जाता है, दया और कृपा के संदर्भ में अगर कंपेयर करें इसको, दया और कृपा को आपस में कंपेयर करें तो, हालांकि दया भी अगर ब्रॉडर सेंस में देखेंगे कृपा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, पर अगर अलग से विचार करें दया और कृपा को, तो दया का मतलब है जो चीज मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिली। यानी कि जैसे कई बार हम कहते दया करके मेरा ये काम कर दीजिए, दया करके मेरे मुझे है ना, ये आप इसका हकदार नहीं थे, पर आपके लिए काम कर दिया गया, प्लीज। इसलिए हम रोज बात करते हैं यूज प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज का क्या मतलब होता है? नॉट प्लीजिंग, प्लीज मीन्स है ना दया, दया। तो और इसके अगेंस्ट में कृपा, जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। अरे ऐसा कैसे जो मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला? यानी कानूनन इंसाफ के नजर से देखा जाए तो मैं जिस सजा का हकदार था मुझे उससे बचा लिया गया। हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज बी मर्सीफुल, यानी कि रहम, रहम खाइए मुझे, यानी कि जो मुझ पर मिलना चाहिए था पर शायद मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे नहीं दिया गया। So these are the, तो शास्त्र में इसलिए दोनों का विधान है, और ये दोनों चीजें जो है कानून और इंसाफ के जो है दायरे से ऊपर है, नीचे नहीं है। कानून और इंसाफ के दायरे से नीचे की चीज को गैर कानूनी कहा जाता है, कानून और इंसाफ के दायरे से ऊपर की चीज को कृपा, क्लिमेंसी, मर्सी, पार्डन, बेनिवोलेंस, रहमत, करुणा, ये कंसेप्ट, दिस इज अबव कंसेप्ट। तो ये इसीलिए भगवान कहते हैं, ये भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा जो है, पिछले श्लोक के अंत में जो है ये चीज एक लाइन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि दिखाने के लिए साक्षात प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि भाग किया कृष्ण की कृपा के बिना दोनों, तो दोनों का एक्नॉलेज किया जाता है, पर भाग क्या यानी कि वो जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, यानी वो जो इस कृपा को बांटता है उसको भगवान की कृपा है। भाग का मतलब जमाखोर नहीं जो कृपा इकट्ठी करता रहता है, जमाखोरी करी फिर अगले दिन आ गया भिखारी की तरह, जैसे भिखारी होते हैं सड़क पे, एक भिखारी केशव नगर में बता रहे थे, कैलकुलेशन लगाया था कि एक भिखारी अंदाजन जो है जो हमें सड़क पे दिखता है वो अंदाजन दिन में 10,000 रुपये कमाते हैं। मेरे को बताया था उन्होंने कि कैसे 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 होता है, एक रेड लाइट पे इतने मिनट में इतनी गाड़ियाँ, उसमें से इतने पैसे, और उसके हिसाब से मिनट, फिर घंटा, फिर 12 घंटा, 14 घंटा, इस हिसाब से उन्होंने बताया था। और अगले दिन वो फैसे ही पहुँच जाता है हाथ चला के मुँह बना के, है ना। तो ये जमाखोरी करने वाले को कृपा नहीं कहते, उसको भिखारी कहते। कृपा प्रार्थी जो है यानी ये वो जो कृपा ले और कृपा को बांटे या कृपा को बांटने की नियत से कृपा ले, यानी कि ये भगवान का संदेश, ये कन्विक्शन जो उसके खुद के पास है, जो भगवान की कृपा से मिलती है वो आगे दे उस कन्विक्शन को, उस समझ को, उस विश्वास को जो भगवान के वजह से उसके अंदर आई है, जो यहां पर बात करें भगवान के वजह से, बिना ईश्वर ईश्वर है कृपा, बिना ईश्वर है क्यों नहीं है, सो वो आगे जाए तो वो राइटफुल क्लेमेंट है इस कृपा को। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ साक्षी चैतन्य चेतामृत के, जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित भक्तवृंद की, दलाई गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे।